नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। सत्या नडेला की हिट रिफ्रेश एक नेतृत्व संस्मरण, प्रबंधन विचार और प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चिंतन का मिश्रण है। पुस्तक का केंद्रीय विषय माइक्रोसॉफ्ट का पुनरुत्थान है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल कंपनी की व्यावसायिक उपलब्धियों का विवरण देना नहीं है। नडेला यह समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी प्रासंगिकता, ऊर्जा और दिशा खोने लगे, तब उसे अपने उद्देश्य और व्यवहार को फिर से देखना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को वे हिट रिफ्रेश कहते हैं। पुस्तक तीन परतों में आगे बढ़ती है। भारत में नडेला का आरंभिक जीवन और व्यक्तिगत अनुभव, माइक्रोसॉफ्ट की संस्कृति तथा रणनीति में बदलाव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मिश्रित वास्तविकता एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों के सामाजिक प्रभाव। इसका सबसे विशिष्ट विचार यह है कि तकनीकी परिवर्तन का आधार केवल इंजीनियरिंग या उत्पाद नहीं, बल्कि सहानुभूति, सीखने की इच्छा और साझा संस्कृति है। एक सक्रिय मुख्य कार्यकारी के रूप में नडेला अधूरे परिवर्तन की कहानी लिखते हैं, इसलिए यह पुस्तक तैयार सफलता का उत्सव, कम और निरंतर सुधार की प्रक्रिया का विश्लेषण अधिक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, हिट रिफ्रेश का अर्थ ठहराव से उद्देश्यपूर्ण नवीनीकरण तक। पुस्तक में हिट रिफ्रेश केवल कंप्यूटर ब्राउजर का रूपक नहीं है। नडेला इसे उस क्षण के रूप में प्रस्तुत करते हैं जब व्यक्ति, संगठन या समाज को नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नए उद्देश्य की आवश्यकता होती है। माइक्रोसॉफ्ट के संदर्भ में यह विचार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कंपनी के पास विशाल संसाधन, प्रसिद्ध उत्पाद और लंबे समय की सफलता थी। फिर भी वह बदलती तकनीकी दुनिया में आत्मसंतोष का जोखिम उठा रही थी। नडेला का तर्क है कि आकार और पुरानी उपलब्धियां भविष्य की प्रासंगिकता की गारंटी नहीं देती, इसलिए परिवर्तन का अर्थ केवल किसी नए उत्पाद में निवेश नहीं, बल्कि उन मान्यताओं को जांचना है जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। यह दृष्टिकोण परिवर्तन को एक बार की परियोजना मानने से रोकता है। पुस्तक के अनुसार, नवीनीकरण तब विश्वसनीय बनता है जब लोग अपने काम को व्यापक उद्देश्य से जोड़ सकें और पुराने रक्षात्मक व्यवहार छोड़ सकें। केवल शीर्ष नेतृत्व की घोषणा पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि संस्कृति रोजमर्रा के निर्णयों, बैठकों, ग्राहक संबंधों और सहयोग में प्रकट होती है। नडेला इसीलिए कंपनी की आत्मा को पुनः खोजने की भाषा प्रयोग करते हैं। यह व्यावसायिक पुनर्गठन से अधिक गहरा दावा है, जिसमें संस्था स्वयं से पूछती है कि वह किसके लिए मौजूद है और अपनी क्षमता से किसे सशक्त बना सकती है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि बदलाव शुरू करने से पहले समस्या को केवल प्रदर्शन की कमी नहीं, उद्देश्य और सीखने की कमी के रूप में भी देखना चाहिए। दूसरा, सहानुभूति को नेतृत्व और नवाचार की कार्यशील क्षमता बनाना। हिट रिफ्रेश में सहानुभूति नैतिक सजावट नहीं, नेतृत्व और उत्पाद निर्माण की व्यावहारिक क्षमता है। नडेला इसे दूसरों को सुनने, उनकी परिस्थिति को समझने और उनकी श्रेष्ठ क्षमता सामने लाने की योग्यता से जोड़ते हैं। उनका निजी पारिवारिक अनुभव, विशेषकर उनके बड़े बेटे के जन्म के बाद देखभाल और विकलांगता को समझने की प्रक्रिया, इस विचार को व्यक्तिगत आधार देता है। पुस्तक यह दावा नहीं करती कि सहानुभूति कठिन व्यावसायिक निर्णयों का विकल्प है। इसके बजाय यह कहती है कि बिना मानवीय संदर्भ समझे लिया गया निर्णय अधूरा होता है। तकनीकी कंपनी के लिए इसका सीधा अर्थ है कि उत्पादों को केवल तकनीकी कौशल के प्रदर्शन के रूप में नहीं बनाना चाहिए। उपयोगकर्ता की बाधाएं, पहुंच की जरूरतें, काम करने की स्थितियां और वास्तविक समस्याएं समझना आवश्यक है। सहानुभूति ग्राहक केंद्रितता को अधिक ठोस बनाती है, क्योंकि वह आंकड़ों के पीछे मौजूद लोगों की जरूरतों पर ध्यान दिलाती है। नेतृत्व के स्तर पर यह दृष्टि सुनने, अलग मतों को जगह देने और कर्मचारियों को केवल संसाधन न मानने का आग्रह करती है। नडेला के तर्क की शक्ति यह है कि वह मानवीय गुण और व्यावसायिक नवाचार को विरोधी नहीं मानते। विविध अनुभवों को सुनने वाली संस्था बेहतर प्रश्न पूछ सकती है, अनदेखी जरूरतें पहचान सकती है और अधिक समावेशी समाधान बना सकती है। फिर भी सहानुभूति तभी प्रभावी है जब उसे भर्ती, उत्पाद डिजाइन, प्रबंधकीय व्यवहार और जवाबदेही में उतारा जाए। केवल संवेदनशील भाषा बिना संस्थागत बदलाव के संस्कृति नहीं बदलती। तीसरा, सीखने वाली संस्कृति और मुख्य कार्यकारी की सांस्कृतिक क्यूरेशन। नडेला का सबसे चर्चित प्रबंधन विचार यह है कि मुख्य कार्यकारी की भूमिका में सी का अर्थ संस्कृति का क्यूरेटर भी है। यह कथन नेतृत्व को केवल रणनीति, लक्ष्य और वित्तीय परिणामों तक सीमित नहीं रहने देता। उनके अनुसार, शीर्ष नेता का व्यवहार संस्था को संकेत देता है कि कौन से प्रश्न स्वीकार्य हैं, असफलता पर कैसी प्रतिक्रिया होगी, किस प्रकार का सहयोग सम्मानित होगा और ग्राहक की आवाज को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट में नडेला का सांस्कृतिक लक्ष्य जानने वाले से सीखने वाले की ओर बढ़ना था। यह बदलाव विकास मानसिकता से जुड़ा है। इसका अर्थ हर विचार को सही मान लेना नहीं, बल्कि जिज्ञासा, प्रयोग, प्रतिक्रिया और सुधार के लिए जगह बनाना है। जानने वाले की मुद्रा में व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता बचाने और गलती छिपाने में ऊर्जा लगाता है। सीखने वाली मुद्रा में वह बेहतर तर्क, ग्राहक की प्रतिक्रिया और सहकर्मी की विशेषज्ञता से अपना निर्णय बदल सकता है। बड़े संगठन में यह अंतर निर्णायक है, क्योंकि जटिल समस्याओं का समाधान किसी एक विभाग या नेता के पास नहीं होता। पुस्तक एक माइक्रोसॉफ्ट की धारणा पर भी बल देती है, जिसमें आंतरिक प्रतिस्पर्धा के बजाय साझा मिशन और सहयोग को प्राथमिकता मिलती है। नडेला के लिए संस्कृति का परीक्षण पोस्टर या घोषणा पत्र नहीं, व्यवहार है। क्या टीम अलग राय सुनती है, क्या नेता श्रेय बांटता है, क्या विभाग मिलकर ग्राहक की समस्या हल करते हैं, यह विषय पुस्तक को सामान्य मुख्य कार्यकारी आत्मकथा से अलग बनाता है, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन को रणनीति लागू करने की पूर्व शर्त माना गया है। चौथा, प्रतिद्वंद्वियों के साथ सहयोग और ग्राहक केंद्रित व्यावसायिक पुनर्संयोजन। माइक्रोसॉफ्ट के परिवर्तन का एक ठोस पक्ष यह था कि कंपनी ने प्रतिस्पर्धा को शून्य योग खेल की तरह देखने की पुरानी प्रवृत्ति पर पुनर्विचार किया। हिट फ्रेश में नडेला बताते हैं कि ग्राहकों की जरूरतें किसी एक मंच, उपकरण या विक्रेता तक सीमित नहीं रहती। यदि ग्राहक अनेक प्रणालियों और सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो कंपनी को अपनी पेशकश वहां भी उपयोगी बनानी होगी, जहां पहले वह केवल प्रतिद्वंद्वी देखती थी। इस सोच ने सहयोग, साझेदारी और अधिक खुले तकनीकी रुख को व्यावसायिक आवश्यकता के रूप में स्थापित किया। यह परिवर्तन उदारता का दावा भर नहीं है, इसका तर्क ग्राहक केंद्रित है। किसी संगठन की तकनीक तभी मूल्यवान है जब वह ग्राहक के मौजूदा कामकाज में बाधा घटाए, उत्पादकता बढ़ाए और विकल्पों के साथ चल सके। इसलिए नडेला पुराने प्रतिद्वंद्वियों के साथ सहअस्तित्व और प्रतिस्पर्धा दोनों की बात करते हैं। यह दृष्टिकोण नेतृत्व के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़े पुराने संघर्ष अक्सर व्यावहारिक निर्णयों में बाधा बनते हैं। पुस्तक यह भी दिखाती है कि संस्कृति और व्यापार रणनीति अलग विषय नहीं है। विभागों के बीच सहयोग, बाहरी साझेदारों के प्रति खुलापन और ग्राहक की वास्तविक समस्या पर ध्यान, ये सभी उसी सीखने वाली संस्कृति के परिणाम हैं। हालांकि पुस्तक माइक्रोसॉफ्ट के दृष्टिकोण से लिखी गई है और हर कठिन व्यापारिक समझौते का निष्पक्ष बाहरी मूल्यांकन नहीं देती, फिर भी इसका उपयोगी सबक स्पष्ट है। बाजार बदलने पर अपनी पहचान बचाने का सर्वोत्तम तरीका पुराने सीमित नियमों से चिपके रहना नहीं, बल्कि ग्राहक के लिए उपयोगिता को प्राथमिकता देना है। अंत में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में तकनीकी आशावाद के साथ डिजिटल भरोसा। पुस्तक का अंतिम प्रमुख आयाम भविष्य की प्रौद्योगिकियां हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मिश्रित वास्तविकता और क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल है। नडेला इन्हें उत्पादकता, स्वास्थ्य, शिक्षा और वैज्ञानिक खोज के लिए महत्वपूर्ण संभावनाओं के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण केवल तकनीकी क्षमता का उत्सव नहीं है। वे प्रश्न उठाते हैं कि डेटा का उपयोग कैसे होगा, निजता कैसे सुरक्षित रहेगी, स्वचालित प्रणालियों में पूर्वाग्रह कैसे घटेगा और तकनीकी प्रगति के लाभ अधिक लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। यहाँ पुस्तक का केंद्रीय मानवीय तर्क फिर सामने आता है। यदि तकनीक लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए है, तो उसके डिजाइन और उपयोग में गरिमा, पहुंच और जवाबदेही को शामिल करना होगा। नडेला डिजिटल भरोसे को एक महत्वपूर्ण आधार मानते हैं। भरोसा केवल कानूनी अनुपालन से नहीं बनता, बल्कि इस बात से बनता है कि संस्था डेटा, सुरक्षा और उपयोगकर्ता के हित के बारे में स्पष्ट तथा जिम्मेदार व्यवहार करे। वैश्विक तकनीकी कंपनियों के लिए यह और जटिल है, क्योंकि अलग देशों के कानून, सामाजिक अपेक्षाएं और राजनीतिक दबाव भिन्न हो सकते हैं। इस भाग की सीमा यह है कि कई विचार व्यापक सिद्धांतों और भविष्य की दिशा के रूप में आते हैं, विस्तृत नीति खाके के रूप में नहीं। फिर भी यह पुस्तक को केवल कॉरपोरेट बदलाव की कहानी नहीं रहने देता। नडेला का आग्रह है कि तकनीकी नेतृत्व को यह पूछना चाहिए कि क्या बनाया जा सकता है, इसके साथ यह भी कि क्या बनाया जाना चाहिए, किसके लिए और संभावित हानि की जिम्मेदारी कौन लेगा। निष्कर्ष में हिट रिफ्रेश उन पाठकों के लिए विशेष उपयोगी है जो नेतृत्व, संगठनात्मक संस्कृति, डिजिटल व्यवसाय या तकनीकी नीति में रुचि रखते हैं। प्रबंधक इसमें यह समझ सकते हैं कि संस्कृति को घोषणाओं से नहीं, नेतृत्व के लगातार व्यवहार, सीखने की आदतों और सहयोग की संरचनाओं से बदला जाता है। तकनीकी पेशेवरों के लिए पुस्तक उपयोगकर्ता की जरूरत, पहुंच और जिम्मेदार डिजाइन को इंजीनियरिंग के बाहरी विषय नहीं, नवाचार के मूल घटक के रूप में रखती है। उद्यमी और परिवर्तन का सामना कर रही संस्थाओं के लोग भी इससे यह व्यावहारिक विचार ले सकते हैं कि पुरानी सफलता को बचाने की चिंता नई सीख और साझेदारी की क्षमता को दबा सकती है। पुस्तक की एक सीमा भी है, यह स्वतंत्र इतिहास नहीं माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी का चिंतन है, इसलिए कंपनी के बदलाव का वर्णन स्वाभाविक रूप से भीतर के दृष्टिकोण से आता है। कुछ पाठकों को संस्मरण, प्रबंधन विचार और भविष्य की तकनीक के बीच इसकी संरचना बिखरी हुई लग सकती है, फिर भी यही मिश्रित रूप इसकी अलग पहचान बनाता है। अनेक कॉरपोरेट पुस्तकों में परिवर्तन को तैयार परिणाम और सरल सूत्र की तरह प्रस्तुत किया जाता है। नडेला परिवर्तन को अधूरी, कभी कभी कठिन और सामूहिक प्रक्रिया के रूप में रखते हैं। सहानुभूति को नेतृत्व की भाषा तक सीमित न रखकर उत्पाद, ग्राहक और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना इसका सबसे विशिष्ट योगदान है। इसलिए यह पुस्तक केवल माइक्रोसॉफ्ट की वापसी समझने के लिए नहीं, बल्कि तेज तकनीकी बदलाव के बीच मानवीय और संस्थागत नवीनीकरण पर विचार करने के लिए पढ़ी जानी चाहिए। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं सात्या नडेला, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।